स्वामी राधा जी के प्रिय सुख हैं ना, उनके हाथों में लालित और पावित हुए, उनको कृष्ण नाम श्याम नाम पढ़ा रही है, ठीक है, परम सौभाग्य उनका है। किंतु जो परीक्षित महाराज अपनी मैया को कह रहे हो, मैया कृष्ण को अपना बेटा नाती और पोता मत देखना, अपने भाई का लड़का मत समझना, तुम उनको क्या समझना, तुम उनको अपना गोपियों जैसा प्राण बल्लभ समझ करके उनकी उपासना करो। मैया को ये कोई कहेगा ऐसी बात? तो ये बतलाइए तो कैसे थे, और ये भी प्राण बल्लभ के रूप में कृष्ण को पाना चाहते हैं इसलिए अपनी मैया को कहा सुखदेव गोस्वामी जी पक्षी के रूप में, और ये प्राण बल्लभ के रूप में यदि वहां पर लीला में उपस्थित हैं, बतलाओ तो इनका कितना सौभाग्य। वो तो हम लोग जैसे मूढ़ व्यक्तियों को कुछ उपदेश दिलाने के लिए, श्रीमद् भागवत को प्रकाश करने के लिए अपने को छिपा करके और इस प्रकार से कर रहे हैं, इसलिए परीक्षित महाराज जी को कम न समझा जाए। परीक्षित महाराज अर्जुन ये सब बद्ध जीव नहीं है, ये सब मुक्त जीव हैं, कृष्ण के परिकर हैं, नित्य परिकर हैं, इसलिए जितने हमारे श्रोता लोग हैं वो भी वंदनीय है। हमारे गुरुजी के गुरुजी कहा करते थे, जितना ये श्रोता है मैं सबको नमस्कार करता हूं, क्यों, जिनके देखने से ही कृष्ण नाम मुझे आता है वो हमारे प्रणम और गुरु जैसे हैं। गुरु कभी शिष्य नहीं करता, उनका ये कहना है। गुरु क्या करता है, किस जिसको पैर ऊपर में हाथ रख देता है वो गुरु बन जाता है, जगत का गुरु बन जाता है, वो शिष्य ही नहीं रहता। आजकल करके सामाजिक कुछ लोग ऐसे हैं जो शिष्य को मंत्र तो देते हैं किंतु उनका हाथ का पानी नहीं पी सकते हैं, ये क्या हुआ? जब बेटा बना लिया, बेटी बना लिया, उसको कृष्ण नाम दे दिया तो अपने समकक्ष की तो बात क्या रहे, उनके हाथ का पानी नहीं चलेगा, उनके हाथ का रसोई नहीं चलेगा, तो फिर वो क्या। किंतु हम लोगों के प्रभुपाद, हम लोगों की धारा में, परंपरा में प्रभुपाद जी ने और सब लोगों ने गुरु बनाया सबको, जगत के गुरु होकर के सब जगह प्रचार कर, गुरु हैया तारो एक देश, ऐसा उनको दे दिया। इसलिए हम लोग, मैं सब श्रोताओं की भी वंदना करता हूं, ये सबके बड़े प्रिय हैं। आज एकादशी है, अभी ये प्रसंग आएगा, मैं संक्षेप में दो चार शब्दों में बतलाऊंगा। एकादशी का महात्मा बड़ा है, न बड़े बड़े जोगी ऋषि ब्राह्मण इत्यादि का महात्मा अधिक है। एक ऐसा संदेह हुआ लोगों, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि हैं जो अपने अभिसंपात से सबको जला सकते हैं या जिसको जो हो वो सब कुछ देने वाले हैं, ऐसे ऋषि थे दुर्वासा, और एक साधारण गृहस्थ व्यक्ति थे महाराज अम्बरीश। अम्बरीश जी एकादशी करते, जिस एकादशी में द्वादशी मिली हुई होती उस महाद्वादशी का वो व्रत अवश्य करते। एकादशी को भी छोड़ करके यदि द्वादशी उसमें मिल जाए और द्वादशी उसमें हो जाए तो वो सब एकादशियों से द्वादशी का महात्म अधिक होता है। वैष्णव लोग शुद्धा एकादशी भी छोड़ करके वो द्वादशी मिली जो है वो उसको करते। वो ऐसा हुआ कि वो एक वर्ष के लिए एकादशी का संकल्प लेकर के बैठे, अपने राज्य को छोड़ करके मथुरा में अपनी छावनी बना ली। अम्बरीश टीला जहां पर है वहीं पर वो रहते थे, और एक वर्ष में ब्रज में रह करके एकादशी करूंगा, ऐसी उन्होंने संकल्प कर लिया। एकादशी उन्होंने किया, द्वादशी का ये योग था, और उसी समय में दूसरे दिन, पहले एकादशी तो घट गई है ना, एकादशी चली गई, द्वादशी में किया, अब त्रयोदशी आने वाली है, इसलिए त्रयोदशी के पहले ही द्वादशी में ही उसका पारण करना है, और वो भी पहले चरण में नहीं दूसरे चरण में करना है, नहीं तो एकादशी व्रत समाप्त हो जाएगा। इसी समय में दुर्वासा आ गए, उन्होंने देख करके कहा आज बड़ा हमारा सौभाग्य है कि आप द्वादशी के दिन आए हैं, अब यहीं पर पारण कर लेंगे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं जरा जमुना पासी में जमुना में स्नान कराऊं। जमुना में स्नान करने गए और जानबूझ करके देरी लगा दी, सूर्योदय के बाद में 15 मिनट के बाद ही में द्वादशी का पारण था, अन्यथा पारण वो समाप्त हो जाएगा। 15 मिनट में आप स्नान करके आ जाइए। उन्होंने निर्जला उपवास किया था, जानबूझ करके देरी करके थोड़ी देर के बाद में इन्होंने सोचा, ब्राह्मणों से उन्होंने पूछा अब क्या करना चाहिए, 15 मिनट के अंदर में हमको कुछ ठाकुर जी की पूजा करके और कुछ लेना है, और यदि नहीं लेता हूं तो एकादशी व्रत नष्ट हो जाता है, और उधर में जोगी महा तपस्वी हैं, यदि कुछ असुविधा त्रुटि मेरी हो गई तो मुझे जला करके भस्म भी कर सकते हैं, या जैसा तैसा अभिन संपात कर देंगे, अब क्या करना चाहिए। एकादशी की रक्षा करनी चाहिए, न ब्राह्मण सम्मान की और जोगी सम्मान की को रक्षा करना चाहिए। सब लोगों ने कहा आपने निर्जला उपवास किया है, इसलिए ठाकुर जी का चरणामृत जल है उसको आप ग्रहण कर लीजिए, पारण भी नहीं होगा, पारण हो भी जाएगा, खाना भी नहीं हुआ, खाना हो भी गया, इसलिए आप इसको कर लीजिए, आपका व्रत रह जाएगा, फिर आएंगे उनको खिला पिला करके आप ग्रहण कर। इन्होंने जलपान कर लिया, चरणामृत को लिया, थोड़ी देर के बाद में दुर्वासा आए, बोले तुम बड़ा भारी ढकोसला है, ढोंगी है, हमको निमंत्रण दे करके और तुम पहले ही पारण कर लिया, तुम हमें नहीं जानते जो मैं कैसा हूं। जटा उखाड़ा और कृत्या को उन्होंने स्मरण किया और जलती हुई आग उनके तरफ में जलाने के लिए चले। भगवान का चक्र सुदर्शन उनकी रक्षा कर रहा था, भक्तों की रक्षा सब करता, इस समय भी करता है, सब समय करता है, इसलिए उसका नाम है सुदर्शन। सुदर्शन माने काटने का हथियार नहीं, सुदर्शन। सुदर्शन माने क्या, दिव्य दृष्टि देकर के उनका एकदम कल्याण सुधार देता है जीवन में। इसका ये माननी जैसे काट दिया और खत्म कर दिया, हत्या कर दिया, ये तो सुदर्शन का अर्थ नहीं है। ये सुदर्शन भी उन पर कैसे कृपा करते हैं देखिए, बस सुदर्शन चले, कृत्या को तो समाप्त कर दिया। अब दुर्वासा के तरफ में बढ़े, दुर्वासा भागे, समस्त पृथ्वी में भागे, ब्रह्मलोक यहां तक कि पाताल लोक सब लेकर के भ्रमण करते 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 कोई आश्रय नहीं दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश के पास में गए, इन्होंने किसी ने भी उनको आश्रय नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद में फिर वो ब्रह्मलोक में पहुंचे, घूमते घूमते उनको 1 वर्ष लग गया, और ये एक पर पकड़े हैं अम्बरीश महाराज, ये ब्राह्मण का कोई अहित न हो, हे सुदर्शन जी आप इन पर कृपा करें। और ये भाग रहे हैं, भक्तों की ऐसी महिमा, कृत्या जलाने आई, ये चुपचाप खड़े हैं छाती तान कर मृत्यु का आलिंगन करने के लिए, इनको तनिक भी भय नहीं हुआ। और उधर में जब चक्र सुदर्शन के पास में जाता तो वो भगते हैं, उनको मृत्यु का डर है, भक्तों का मृत्यु का डर नहीं, आज नकल तो मरना है, आत्मज्ञान है, किंतु उनको नहीं, इसलिए भगे, प्रभु के पास में गए, नारायण के पास में। उन्होंने कहा यहां पर रहने से काम नहीं चलेगा, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, पैर में कांटा यदि गड़ जाए तो सिर से नहीं निकलता, विष्णु पाप कहते हैं वैष्णवों को। अम्बरीश महाराज को तू साधारण गृहस्थ समझता है, वो तो संपूर्ण रूप से भगवान की सेवा करने वाले, भजन करने वाले हैं, तुमने उनके चरणों में अपराध किया है, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता हूं, यदि क्षमा कराना है तो जाओ उन्हीं के पास में जाओ, महाराज के पास में जाओ। अब कोई उपाय नहीं दे करके थके हुए और सर्वस्व लूटे हुए व्यापारी की भांति फिर वहीं पर चले। वो तो पहले से हाथ जोड़ करके खड़े थे, चक्षुदर्शन की उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु आप भगवत स्वरूप हैं, इनकी रक्षा करें। उनकी प्रार्थना से वो शांत हो गए। अब इनके चरणों में वो गिरने जा रहे हैं, उनके चरणों में गिर करने, हमारा आपके चरणों में अपराध हुआ। वो कहते हैं कि हमारा उनके चरणों में, आपके चरणों में अपराध हुआ। कहते हैं अंत में, ओहो अनंत दासाना, अरे क्या कर रहा है सर, ओहो अनंत दासाना विशिष्ट मध्य में, आज हमारा कितना सौभाग्य, आज भगवान के भक्तों की महिमा आज हमारे सामने प्रकट हुई। हमने इनको जलाने की चेष्टा की, जलाना तो दूर रहा, चक्र हमारे ऊपर में टूट गया। और ये क्षमा की मूर्ति, उनसे हमारी रक्षा इन्होंने की और हमारा कल्याण चाहते हैं। कभी भी इनको क्रोध नहीं होता, कभी द्वेष की भावना नहीं होती, जगत पर कल्याण करने की भावना रहती है। फिर उनको शांत किया, फिर उनकी पूजा की, दुर्वासा को खिलाया और इसके बाद में तब अपने लोगों के साथ में मिल करके खाए। आज एकादशी का दिन है, कल ही हमने बतलाया था, इसलिए एकादशी सब लोगों का कर्तव्य है। एकादशी की यदि हम ये सब नियम पालन करें, किसी भी व्रत करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी व्रत, न सोम न मंगल न बुध न बृहस्पति न शुक्र न शनि न रवि न सोमवती अमावस्या और न गणेश चतुर्थी सकट इत्यादि जितने भी हैं, वो भक्ति देवी के चरण के अंगुली की जो प्रभा है उसमें उसकी ये आरती उतारते हैं। वो लोग जो कोटि कोटि जन्मों में आराधना करने से देंगे, भगवान की कृपा भक्ति जी की कृपा कटाक्ष होने से ही अपने आप सब हो जाएगा। इसलिए एकादशी व्रत सबसे बढ़कर कृष्ण को देने वाली है। चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में है। पंडित कहते हैं कि एकादशी को हम लोगों ने जगन्नाथ जी के यहां उल्टा लटका दिया है, पैर ऊपर बांध दिया और मुख नीचे एकादशी का। कहते हैं किस लिए, पांच ही बातें हैं ना, अंट संट खाते हैं और उस दिन भी अन्न खाते हैं, इसलिए वहां के पंडित ऐसा कहते हैं। जो एकादशी नहीं करना चाहिए, विशेष करके सधवा लड़कियों को और सधवा स्त्रियों को तो करना ही नहीं चाहिए, ये सब झूठ कपोल कल्पित बात है, शास्त्र बहिर्भूत बात, उनकी बातों में कभी विश्वास न करें। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान उनको दिया 56 प्रकार के व्यंजन और पकवान इत्यादि के साथ में उनके सामने में उपस्थित कर दिया एकादशी के दिन। महाप्रसाद, महाप्रभु जी महाप्रसाद को सम्मान करना जानते हैं, यदि न खाएं तो अपमान हो जाएगा, यदि खाते हैं तो एकादशी चली जाएगी। ब्राह्मण भी वैसे ही बड़े धुरंधर थे, उन लोगों ने महाप्रभु जी को खिलाने के लिए, जो महाप्रभु यदि एकादशी को खा लेते हैं तो सभी लोग खाने लगेंगे, तब तो हम लोगों को बहुत आराम होगा, एकादशी नहीं करने का कष्ट नहीं पड़ेगा। महाप्रभु जी ने बीच में प्रसाद रख दिया, साष्टांग प्रणाम करके 1008 प्रणाम करने लगे, उनके भक्त लोग भी हजारों प्रणाम करते लगे। प्रणाम करते करते घंटों चला गया। इसके बाद में स्तव स्तुति, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतांग राजन विश्वास नहीं बजायते इत्यादि सब श्लोक पढ़ने लगे। बासी अन्न भी हो ठाकुर जी का प्रसाद, कुकुर ने उसको खा दिया, यदि वो सड़ा गला भी है, कहीं बाहर देश से लाया गया है, बासी भी है, जैसा तैसा है, कुकुर ने भी उसे उठा लिया फिर छोड़ दिया, कैसा भी हो, सूखा बासी तासी कैसा भी हो, महाप्रसाद सब समय अप्राकृत हो, महाप्रसाद भगवत स्वरूप है, भगवान में नाम में ने? विग्रह में, ये सब जो कम सौभाग्य वाले लोग हैं उनकी श्रद्धा नहीं होती। गोविंदे नाम ब्राह्मण वैष्णव, ब्रह्मणी वैष्णव, भगवान में, वैष्णव में, हरि नाम में धाम्य साधारणों की बुद्धि नहीं होती है। ये सुकृति संपन्न यदि व्यक्ति हो तब तो इनको भगवत स्वरूप का ये है। ये भागवत कागज की पोथी नहीं है, ये स्वयं भगवान है। अभी बतलाया गया, फिर बतलाया जाएगा ये सब चीजें चैतन्य महाप्रभु जी। फिर स्तव स्तुति करते 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 लग गया घंटों, और इसके बाद में परिक्रमा करके कीर्तन करने लगे भगवान महिमा की, और करते करते सारी रात बीत गई। 5 बज गया जब सवेरे, बस कीर्तन समाप्त करके सब लोग कीर्तन करते 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 समुद्र में गए, समुद्र में स्नान किया और जगन्नाथ जी का दर्शन करके और आकर के सबको बैठा दिया, अपने भी प्रसाद पाया दूसरों को। पंडे लोग देख करके चकित हो गए। भगवान की बुद्धि कुछ 2 अंगुल अधिक होती है लोगों से, इसलिए एकादशी का व्रत आप लोग किसी भी स्थिति में मत छोड़ेंगे। यदि एकादशी का व्रत किया, आपका सब कुछ करना हो गया जीवन में, भक्ति भी हो जाएगी, वैष्णव का संग हो जाएगा, अंत में भगवत धाम में। इसलिए एकादशी का ऐसा महत्व है, वर्णन किया। अब यहां से हम लोग हरि कथा हम लोग आरंभ करेंगे। आप लोग खूब श्रद्धा के साथ में आप लोग सब
कृष्ण चालू नहीं है,
कृष्ण को चिढ़ाती हैं। वो चिढ़ा रही जो आप काले कैसे भगे, आप काले कैसे बने। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं तो कृष्ण तनिक भी नहीं सुनते, आंख भी उधर नहीं फेरते, और गोपियां उनको चिढ़ाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी बोलती हैं, उनको बड़ा आनंद लगता है। तो गोपियों ने पूछा कि आप काले कैसे हो गए, तो कृष्ण कहा कि तुम ही बतलाओ कि कृष्ण कैसे काल, मैं कैसे काला बन गया। और ब्रज की इस विषय को जो जानने वाली है उनकी प्रतिनिधि मथुरा वाली अभी ये सब सुनाएंगे आपको, और तब तक 5
ज्ञान शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय पदभक्ताय नमो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मे तया कर्वोभिनेति तं तोष्मि।
भगवान के कृपा से हम लोगों का श्रीमद् भागवत पारायण निर्विघ्न चल रहा है। आज हम लोगों का तृतीय स्कंद में हम लोग उपस्थित हुए, और अंत में देवहूति कपिल संवाद में पहुंचे हैं। कपिल जी भगवत अवतार हैं, सत्यावेश अवतार, देहूति जी भी भक्ति स्वरूपणी है। देहूति जी ने हम लोगों के कल्याण के लिए, संसारी जीवों के लिए प्रहलाद मुन से, कपिल देव जी से बहुत से प्रश्न पूछे, जिसके उत्तर में उन्होंने श्रीमद्भागवत के प्रसिद्ध श्लोक का वर्णन किया, सतांग प्रसंगां मम वीर्य संविदौ भवंत रित कर्ण रसायन तथा तज्जोसनात आशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति। बतला रहे हैं भक्ति ही जीवों के लिए मूल प्रयोजन है, किंतु ये भक्ति होगी कैसे? पूर्व जन्म के संस्कार से हो, वैष्णव के संग से हो। भक्तिस्तु भगवत संगे न परिजायत, सत्संग से भक्ति मिलती है, उसी का भी इसे श्लोक में बतला गया। सतांग प्रसंगम वीर्य संविदौ, कोई कुछ न करे और भक्तों का संग हो जाए और उनके संग में भगवान की लीला कथाओं का शुद्ध रूप में वर्णन और श्रवण हो, तो जीव का निश्चित कल्याण हो। इसलिए भक्ति राज्य में सबसे पहले साधु संग होना आवश्यक है। संसार में भ्रमण करते हुए बड़े सौभाग्य से जब संसार के निवृत्ति का कारण होता उपस्थित होता है, तो सबसे पहले उसका साधु संग होगा। जब साधु संग होगा, समझ लो कि अब हमारे संसार का अंत होने वाला है। कैसे संग होता है हम तो करना नहीं जानते, किंतु वो बड़े दयालु होते हैं, किसी न किसी प्रकार से, छल से, बहाना से वो संग करा लेते हैं। उनको कोई जरूरत नहीं है, किंतु बेशयाशक्त गृह मेधी लोगों के घर में स्वयं उपस्थित हो जाए, कोई काम नहीं, और उनसे संपर्क लगाकर पानी थोड़ा सा मांग लिया, पी लिया, कोई न कुछ कर दिया। एक साधु तो इतने दयालु हैं, भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं और ढूंढ ढूंढ करके ऐसे लोगों के पास में जाते हैं जिनको भक्ति नहीं, विचार करके जाते हैं। एक बुढ़िया के यहां गए, बुढ़िया से कुछ मांगा, उसने इनको गाली गलौज दी, जैसे इन मुंहों को और स्थान नहीं जब मेरे पास आते हैं मांगने के लिए, और रोज गाली सुना देती और रोज उसी के घर में जाती, कहे ये ऐसे नहीं मानेगा। तो वो बुढ़िया अपना आंगन लिप रही थी और इतने में पहुंचे, राधे श्याम किया तो लिप रही थी, पोतना उठाया, पोतना ही उनके मुख में मारा। पोतना समझते हैं ना, लिपने का घर पहले लिपता पोतता था गोबर इत्यादि के साथ, अब तो उसकी जरूरत ही नहीं है। तो उसी कपड़े से भिजे हुए पुराने और मिट्टी फिट्टी लगे उसी से मारा। सुने कि आज तुम्हारा मंगल हो, तुमने कुछ दिया तो बस उसी को ले लिए, और लेकर के जमुना जी में मलमल कर धोया खूब अच्छी तरह से, और धो करके घी में उसे डुबो दिया, उसकी बत्ती बनाए और उसी से अपने ठाकुर जी को अर्चन इत्यादि किया। अब उसका ये फल हुआ कि बुढ़िया का मन धीरे धीरे सुकृति से हो करके, फिर साधुओं का संग हो करके, फिर धीरे धीरे कथा सुनने में रुचि हो गई और अंत में भगवान। इसलिए कैसे वो दयालु हैं, बहुत विधा भागवता तिथि भूता स्वयं प्रभु इत्यादि में पहले हम लोगों ने वर्णन किया। जब साधुओं का संग होता है तो साधु लोग गुरु की महिमा बतलाते हैं। संसार में माता पिता भी बड़े दयालु हैं, उनका ऋण चुकाया नहीं जा सकता, किंतु फिर भी उनसे भी संत लोग और दयालु होते हैं। माता पिता एक जन्म की बात करते हैं और उनमें भी यदि कुछ स्वार्थ का कुछ गड़बड़ हो जाए ना, विरोध हो जाए, तो नहीं कृपा करें। किंतु साधु पुरुष जो हैं वो गुरु की महिमा बतलाते हैं कि वो कोटि कोटि जन्मों के लिए उसका संपर्क भगवान से कर देते हैं, एक जन्म के लिए नहीं, अहेतु की दयालु होते हैं। माता पिता से पुत्र का या संतान का संबंध होता है, दूसरों पर तो वो कृपा नहीं करते, अपने संतान ही पर करते हैं विशेष रूप से। इनका सब प्राणियों के ऊपर में समभाव से इनकी कृपा होती है। गुरु किसी न किसी रूप में उसे भगवान से संपर्क कर देता है, इसलिए संत लोग गुरु की महिमा बतलाकर बतलाते हैं कि बिना गुरु के बिन गुरु भवन निधि करे न कोई, जो बिरंच शंकर सम हो, बिरंची ब्रह्मा और शंकर के समान भी कोई हो, बिना गुरु के भवन निधि को पार करके भक्ति कभी नहीं लाभ सकते। श्रीमद् भागवत इत्यादि में भी ऐसे ही बतलाया गया, गुरु के लक्षण भी बतलाए गए, समस्त शास्त्रों में पारंगत हो। शब्द ब्रह्म में और साथ में रस ब्रह्म में भी पारंगत हो। कृष्ण ही रस ब्रह्म भी है, शब्द ब्रह्म भी है, उसमें पारंगत हो। रस ब्रह्म के लिए फिर श्रीमती जी का आश्रय लेना पड़ेगा, तब वो रस ब्रह्म होगा, केवल कृष्ण के आश्रय लेने से नहीं होगा। और कृष्ण कहने से श्री कृष्ण कहने से श्री राधा जी अपने आप आ जाते हैं श्री कृष्ण, इसलिए इनमें पारंगत हो, अनुभूति संपन्न हो। यदि समस्त शास्त्रों को जानते हैं किंतु अनुभूति पर ब्रह्म की नहीं है, वो गुरु होने योग्य नहीं है, ऐसे गुरु से कुछ भी लाभ नहीं हो। वेद शास्त्र श्रीमद् भागवत इत्यादि सब उनको याद है, जहां से कहो वहां से कह देंगे, किंतु अनुभूति नहीं है, गुरु होने योग्य नहीं, इसलिए अनुभूति होना जरूरी है। और साथ साथ में जब उनको अनुभूति है और भगवान के तरफ में प्रीति है, अपने आप संसार के प्रति अनाशक्ति वैराग्य हो जाएगा। ये तीन चीजें अवश्यंभावी हैं, एक साथ में जुड़ी हुई, इसलिए गुरु के ये प्रधान लक्षण बतलाए गए। यदि समस्त शास्त्रों में पारंगत भी हो, ब्राह्मण भी हो, सब प्रकार से हो, अनुभूति नहीं है, तो कुछ भी लाभ नहीं। और यदि अनुभूति हुई तो जरूर वैराग्य उसमें होगा ही, इसलिए गुरु के ये सब लक्षण बतलाए गए। संतों के द्वारा ही गुरु लक्षण इत्यादि सब मालूम होते हैं, और कैसे भव सागर पार करेंगे ये सब भी मालूम होते हैं, इसलिए इस श्लोक में बतलाया गया। सतांग प्रसंगम अवीर्य संविदौ भवंत रित करण रसायना कथा, कोई कुछ भी ना करे, साधु संग में बैठ गया, वहां पर भगवान की वीर्यवती बड़ी प्रभावशाली कथाएं होती रहती हैं, बहुत अद्भुत कथाएं होती हैं। उन कथाओं का श्रवण करने से साथ ही साथ भगवान में पहले रुचि होगी, पहले साधन भक्ति है, रुचि से फिर साधन भक्ति आएगी, साधन भक्ति से फिर भाव भक्ति। वो साधन नहीं, उसको साधन भक्ति भाव भक्ति को नहीं कहेंगे, क्योंकि वो ऊपर से हृदय में स्फूर्ति प्राप्ति होती है, वो इस जगत की कोई चीज साधना के द्वारा वो मिलने वाली नहीं है। साधन उसको केवल प्रकाश कर देते हैं मात्र, और फिर भाव भक्ति के होने पर अपने आप प्रेम उसके हृदय में उपस्थित हो जाता है, उसका क्रम यही है। श्रीमद् भागवत में इसमें दिखलाया गया, देवहूति जी एक साधक, कपिलदेव जी उनके पुत्र होने पर भी गुरु हैं, उन्होंने गुरु के रूप में ही भगवान के रूप में उनको ग्रहण किया, पुत्र के रूप में नहीं। पहले पुत्र संबंध तो है किंतु उन पर पुत्र की भावना न रख करके उनमें गुरु भावना हो, और तब उनसे उन्होंने जो प्रश्न किए उसका समाधान किया और उनको भक्ति में प्रतिष्ठित की। बाद ही में अभी आएगा, आज ही के प्रसंग में आएगा, यदि गुरु में निष्ठा नहीं है तो उसको लोक और परलोक कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। भगवान का मिलना तो बहुत दूर की बात है, यदि लौकिक भी गुरु है उसमें परमार्थ में भगवत बुद्धि रखनी चाहिए, नहीं रखने से उधर में बढ़ नहीं सकता। इसलिए कहा गया है कर्मी भी लोग भी साधारण लोग भी अपने गुरु में भगवत बुद्धि रखे, नहीं तो उसके उपदेशों को पालन नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ में कपिल देव जी को केवल गुरु ही नहीं भगवान से अभिन्न उनको भगवान माना, और मान करके तब उनके उपदेशों को बिना किसी शंका बिना किसी संदेह के अपने हृदय में उसको रख दिया। प्रश्न जो किया वो संदेह के लिए नहीं, समझने के लिए किया। इसीलिए साधक लोग परिप्रश्न करते हैं, प्रश्न नहीं करते। लोगों को तंग करने के लिए हमारा प्रश्नों का उत्तर देंगे कि नहीं दे सकते, ये सब मापने के लिए नहीं वो करते, वो तो परिप्रश्न करते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ में, कुछ और जानने के लिए करते हैं, दृढ़ता के लिए वो करते हैं। इस तरह से इनके संवाद में देखते हैं, और तुरंत ही इसी के बाद में देखेंगे सती और शंकर जी का। सती जी दक्ष प्रजापति की लड़की है, शंकर जी से ब्याहने के बाद में दोनों कैलाश में रहने लगे, हरि कथा भी बीच में चलती रहती थी। इसी बीच में त्रेता युग आया, त्रेता युग आने पर रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता को लेकर के वन के लिए निकले लीला करते हुए, और ऐसी करुणामूलक लीला की पशु पक्षी भी द्रवित हो जाए। कृष्ण की लीला सुन करके कोई रोए चाहे ना रोए, किंतु राम की अत्यंत कारुणिक लीलाओं को सुन करके प्रत्येक व्यक्ति रो ही देगा, भले ही दो मिनट के बाद में हंस दे वो दूसरी बात रहे। कृष्ण की लीला में और राम लीला में यही वैशिष्ट्य है। कृष्ण लीला में सभी लोग नहीं रोएंगे, रोएंगे कौन, जिनको भावावस्था हो गई है वो लोग रोएंगे, और उनके आंखों के पलकों की आंसू कभी नहीं सूखेगा, दिन रात तर रहेगा, रोते रहेंगे, विरह में तड़पते रहेंगे, वो फिर बंद नहीं होगा। और विषयी से विषयी भी व्यक्ति हो, राम के लीलाओं का वनगमन, सीता का परित्याग, ये सब जो लीलाएं हैं सुन करके करुण होकर के वो रोने लग जाएगा। रामचंद्र जी ऐसे करुण लीला कर रहे हैं, वन में दंडकारण्य में रावण ने दुष्टता करके सीता जी को चुरा दिया। अब रामचंद्र जी का विरह देखिए, एकदम रोने लगे, जैसे कामी पुरुष अपने स्त्री के लिए, जो कामांध अपनी स्त्री के लिए एकदम मोहग्रस्त है, वो जैसा रोता है, बिलख बिलख करके रोने लगे। रोते 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 ऐसी उनकी दशा हुई कि पशुओं से पक्षियों से मृगों से पूछने लगे, सीता को देखा, सीता को कहीं देखा, हिरणों को देखते हैं कहते हैं सीता को देखा, गोपियां जैसे वृक्षों से पूछ रही है, कृष्ण को देखा हमारे श्याम सुंदर को देखा, रामचंद्र जी उल्टा कर रहे हैं, हमारी प्रिया जी को कहीं देखा पावरे बन गए। उसी समय घोड़ा लक्ष्मण जी उनके दुख में बड़े दुखी हो गए, आश्वासन देने की चेष्टा करते हैं नहीं पाते। दोनों भाई रो रहे हैं कंदरों में, इधर में उधर में, नदियों के तट पर जहां कहीं भी छिपने का स्थान है उसमें वो देख रहे हैं, खोज रहे हैं। शिव जी को इधर कैलाश में इच्छा हुई, अरे हमारे प्रभु लीला के लिए अवतरित हुए हैं, थोड़ी सी उनकी लीला का आस्वादन करके उनको प्रणाम तो कराऊं, किंतु उनकी लीला में कोई बाधा ना हो, इसलिए उनके साथ में सती के साथ में वहां पर उपस्थित हुए। और उपस्थित होकर के रामचंद्र जी को देख करके आंखों से आंसू झरने लगे प्रेम के, और उस अवस्था में देखा जबकि आंखों रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, हाशिते हाशिते कर रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, उसी समय में देखा, देख करके कुछ हंस दिए शंकर जी, ऐसी अद्भुत लीला इसको तो देख करके कौन नहीं मोहित हो जाए। सती जी ने कहा जी प्रिय आप किसको प्रणाम कर रहे हैं, हमने आपके मुख से भगवान ब्रह्मराम की बातें सुनी है, वो चराचर के सृष्टा हैं, वो समस्त देवताओं के भी आराध्य हैं, मोह काम तो उनमें होता नहीं, आप्त काम आप्ताराम इत्यादि हैं, उनको देख करके माया भी मोहित हो जाए, और वो उनको प्रणाम आपने किया, ये दशरथ नंदन ये जो राम रो रहे हैं विलाप कर रहे हैं इनको आपने प्रणाम किया। उन्होंने कहा इसकी बुद्धि कुछ गड़बड़ हो गई। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा प्रिय तुम, मैं तो वही पर ब्रह्म राम जो हैं सर्वव्यापी हैं सब में रमण करने वाले राम हैं, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं, वो और दोनों ये दो नहीं हैं, एक ही हैं, शंका मत करो, जैसे मैं प्रणाम करता हूं उसे प्रणाम करके चलो, कोई भी शंका मत करना। सती जी ने देखा इस व्यक्ति को ये मालूम नहीं कि मेरी स्त्री को कौन हर ले गया, और ऐसा कामी जो स्त्री के लिए बर्बस होकर के और रो रहा समझाने पर भी नहीं समझता है, ये परब्रह्म होते तो उनको पता होता ये सीता जी कहां है और इनकी शक्ति से इनको हर करके कौन ले जाता, इसलिए ये तो किसी भी हालत में ब्रह्म नहीं हो सकता। और शंकर जी इसको प्रणाम कर रहे हैं, इधर बतला रहे हैं, मेरी समझ में ठीक नहीं आ रहा। उन्होंने फिर पूछा, शंकर ने कहा मैं अपने आराध्य देव को ही प्रणाम कर रहा हूं। उन्होंने सोचा जी इसका कुछ खराब दिन आने को है, गुरु में शंका हो संदेहात्मा विनश्यति, संदेह जिसको हो जाए गुरु में तो गड़बड़ हो जाएगा। उन्होंने भरसक चेष्टा की किंतु वो मानी नहीं। शंकर जी ने कहा मैं यहां पर खड़ा हूं, तुमको यदि किसी विषय में इनके लिए शंका है ये पर ब्रह्म है कि मनुष्य है तो आप भले ही जाकर के इनकी परीक्षा ले सकते, मैं यहीं पर खड़ा हूं। बस वो खड़े रह गए बट वृक्ष की छाया में वहीं पर और भगवत स्मरण करने लगे। पर इसका तो अब दुर्दिन आया, दुर्बुद्धि हुई, मेरे बातों में भी इसका समाधान नहीं हुआ। वो चली गई, सोचा जब मैं कैसे इनकी परीक्षा लूं, सोचा अभी सीता जी के विरह में ये व्यथित हैं, मैं सीता जी का क्यों नहीं रूप बना लूं, एज इट इज सीता जी का रूप बना लिया, जैसे सीता जी थी वैसे ही, और बना करके उनके सामने में गई, जहां तो राम हाशिते हाशिते कर रहे हैं उनके सामने गई। उन्होंने उनके तरफ में देखा नहीं, राम दूसरी तरफ में देखने लगे चले गए। फिर वो उधर से फिर उनके सामने आई, फिर भी नहीं देखा, तो फिर उनके सामने आई, ये हमको देख नहीं रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा। जब दो तीन बार ऐसा किया तो रामचंद्र जी को कुछ दया आ गई। जट उनके तरफ में मुड़े राम, बोले माता जी आप यहां पर कैसे ठहर गई? शंकर तो आगे बढ़ गए, चले गए, आप किसकी प्रतीक्षा में यहां पर खड़ी? उनका माथा ठंडा, अरे ये कैसे जान लिया? अभी रो रहा है, सीते सीते कर रहा है, और मैंने ठीक सीता को अभिकल रूप बनाया, और ये हमको माताजी का करके संबोधन कर रहा है। तो भाई ये तो ठीक मालूम होता है जी, वही शंकर जी झूठ नहीं बोलेंगे, शंका की कोई बात नहीं। आराम ने देखा अभी पूर्ण तरह से इसकी शंका नहीं मिटी, पूर्ण तरह से इसकी शंका मिटनी चाहिए। उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने ऐसे प्रणाम किया, यही आंखें बंद की और आंख खोली तो देखा जी सीता जी राम और लक्ष्मण तीनों हैं, तीनों जिधर वो दृष्टि कर रही है, जिधर देख रही है उधर ही देखा राम लक्ष्मण और सीता जी, चारों तरफ में देख रही। ये सीता कहां से आ गई? वो तो चोरी चली गई थी, प्रभाव दिखलाया। थोड़ी देर के बाद में उन्होंने साष्टांग प्रणाम किए, उनको प्रणाम करने के बाद में रामचंद्र जी ने और लीला उसमें कर दी, सीता जी को हटा दिया। और फिर पहले जैसे रो रहे थे ना, हा सीते तू कहां है, और सबसे पूछ रहे हैं, ऐसे आंखों की लड़ी फिर लग गई और विलाप करते हुए आगे बढ़े। अब सती कह रही हैं, अरे ये तो सचमुच में ये परब्रह्म है, अब मुझको पता चला। बस उनको नमस्कार करके अब सुख चाहती हुई अपना रूप त्याग करके बन गई सती और शंकर जी के पास में चली। जब शंकर के पास में पहुंची तो शंकर जी ने पूछा, परीक्षा ले लिया वो ब्रह्म है कि नहीं है, ये बात तुमको अब समाधान हुआ कि नहीं? ये समाधान हो गया, आप जो कहते हैं वो कभी उसमें शंका की कोई भी बात नहीं है, इसलिए मैं समझ गई कि आप ठीक कह रहे हैं। परीक्षा ली? क्या परीक्षा ली नाथ? मैं क्या परीक्षा ली? मैंने कोई भी परीक्षा नहीं, एक तो शंका किया और दूसरी बात की झूठ बोल दिया। झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक झूठ को बतलाने के लिए, बचाने के लिए अब 10-20 फिर झूठ बोलना पड़ता है, और उस झूठ को छिपाने के लिए सारा जीवन झूठामय हो जाता है। इसलिए जैसी बातें हैं ठीक गुरु के निकट बोल दो। अंततः गुरु एक ऐसा होना चाहिए जो अपना हृदय फाड़ करके उसके सामने हम रख दें और वो पूरा सब जान लें। सबसे छिपाओ जो कुछ करो, गुरु से अपनी बात कभी मत छिपाओ और उनके ऊपर में कभी भी किसी प्रकार की शंका मत करो। वो अहेतु की कृपा में है, सब पर कृपा करने। अब जब शंकर जी ने देखा जोग की दृष्टि से, अरे इसने तो मेरी उपास्या देवी सीता जी का रूप बनाया और बना करके उनके सामने गई, रामचंद्र जी ने उनको माता के रूप में पहचान लिया। अब ये आई है, अब शंका यथार्थ नहीं हुई। उन्होंने कहा, मनी मन में संकल्प किया, अब इस देवी के साथ में हमारा भार्या और पति का संबंध नहीं रहेगा, क्योंकि इन्होंने हमारी माता जी का स्वरूप बनाया है, इसलिए अब हमारी आराध्या देवी के रूप में हमारा इनके साथ में संबंध रहेगा, अब तो संबंध हो ही नहीं सकता। संकल्प कर लिया, अब पत्नी और पति का संबंध अब आज से खत्म हुआ। और ये कह करके बिना किसी बात किए हुए आगे बढ़ गए। अब ये सोच रही हैं, इतने में आकाश की वाणी हुई, शंकर जी आपके अतिरिक्त ऐसा कोई संकल्प जगत में करने वाला नहीं है। सती ने पूछा, जी आपने क्या क्या संकल्प किया? वो कुछ भी उत्तर नहीं दिया। अब वो सोचती आश्रम में आई। उन्होंने दाहिने तरफ, पहले बाएं तरफ बैठाते थे, अब बाएं तरफ नहीं बैठाया, सामने तरफ में बैठाया, जैसे गुरु के सामने शिष्य होता है। भगवान को बाएं से प्रणाम करो, किंतु गुरु को सामने से प्रणाम करो, सामने बैठो, उनसे प्रश्न करो, परिप्रश्न करो। अब हरि कथा तो हो रही, किंतु सती का मन सब समय उदास रहा और बाएं के बदले सामने से बैठा है। अब वो समझ गई कि अब हमको पत्नी के रूप में अब ये ग्रहण नहीं कर रहे, पर सोचा जैसा इस शरीर का कोई भी अब जरूरत नहीं, जब इनकी मैं सेवा नहीं कर सकती। और धीरे धीरे समाधि में मग्न हो गए, सब समय प्राय समाधि इस तरह ने लगे। अब उन्होंने संकल्प किया अब इस शरीर को छोड़ना ही है, इससे तो हमारा उनका अब संपर्क उस रूप में नहीं रहेगा। अंत में अपने पिता के यहां गई और कैसे शरीर को छोड़ा ये सब प्रसंग आएगा और आप लोग भी जानते हैं। उस शरीर को छोड़ दिया, फिर हिमालय के यहां वो पुत्री के रूप में जन्मी, पार्वती के रूप में, और फिर शंकर जी से उनकी शादी हुई, फिर वो प्रसंग। इसलिए खूब सावधान, इसीलिए सतम प्रसंगामो मवृज्य संविद भवंतरित करण रसायना तथा तज्जो सनात आशु अपवर्त। आशु माने शीघ्र। श्रीमद भागवत के द्वितीय श्लोक में भी बतलाया गया, तत्क्षणात् धर्म प्रोज्जित कई तो वो अत्र परमो निर्मचराणां सतं। उसमें भी बतलाया गया अंतिम चरण में भगवान की ये जो लीला कथाएं हैं भागवत, जिसका श्रवण करने से तत्क्षणात् भगवान उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। कृति भी सुश्रुभि तत्क्षणात्। सुश्रुभि माने श्रद्धालु व्यक्ति, प्रीति के साथ में श्रवण करने वाला हो तो वो भगवान उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। इसलिए हम लोग भी गुरु के प्रति अपनी शुद्ध निष्ठा बनाए रखें और उन्हीं के कृपा से हम लोग भागवत इत्यादि का श्रवण करके और वो सब चीजें हमारे हृदय में स्फूर्ति हो, यही हम लोग भगवान से प्रार्थना करें। आप लोगों की भी वैसी ही रहे और प्रेम के साथ में श्रीमद् भागवत श्रवण करें, भगवान भी आप लोगों के हृदय में अवरुद्ध हो। और फिर कैसे उसकी गति होती है, घर में कभी कभी किसी सौभाग्यवान जीव भगवान का स्मरण करता है और भगवान का दर्शन भी पा लेता है, सभी नहीं और सैकड़ों जन्मों की स्मृति उसमें आती है, हिल डोल नहीं सकता, सिर नीचा, अपने पेट में सिर रखकर और एकदम बंधा हुआ होता है, कृमि कीट इत्यादि भरे हुए, पैखाना टट्टी मल मूत्र से मिले हुए, रुधिर इत्यादि उसी के कुंड में रहता है, ये बड़ा कष्ट भोगता है। भगवान से प्रार्थना करता है कि जल्दी से निकाल दो। उस समय कैसी प्रार्थना करता है, एक प्रार्थना भगवान नाम का अतिरिक्त और कुछ नहीं। विशेष करके कलियुग में और ऐसे निकृष्ट जीवों के लिए तो भगवान की गति का अतिरिक्त, भगवान नाम के अतिरिक्त तो कोई गति नहीं। एक साधन सबसे श्रेष्ठ है, बस भगवान नाम। भगवान का नाम चिंतामणि से भी कोटि गुण श्रेष्ठ है। साधु संत लोग इस नाम को गलियों गलियों में देते हैं, मदिरा तो सर्वत्र बिक जाएगी, दुकान में ही लाइन में ही फिर उन लोगों को मिलती नहीं। और ये हरिनाम रूपी चिंतामणि बिना पैसे गली गली ले जाते हैं, किंतु कोई इसका लेने वाला नहीं। गाय का दूध लेकर के बाजार में जाइए, गली गली दीजिए, कोई विश्वास नहीं करेगा, नहीं लेगा। और ये मध्य घर में बैठे ही दुकान में बिक जाते, बिना पैसे चारों तरफ ये देते हैं। कहते हैं अरे दिन में करो रात में करो, स्त्री है बच्चा है बूढ़ी है बूढ़ा है शूद्र है चंडाल है देवता है मनुष्य है, इसमें कोई भी भेद नहीं, रात में करो दिन में करो सवेरे करो बिना बिस्तरे पर करो, बिस्तरे से नीचे उठ करके करो, चलते फिरते उठते नहीं हो छींकते समय भी एक बार कृष्ण नाम आ जाए तभी जीव नहीं करता। इसके संबंध में जरा सुनिए तो ले लो कोई, बोलो जल्दी जल्दी करो। दस घंटा लगाए थे।
नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, माला माल हुए माया के जो बने पुजारी एक दिनों कंगाल हुए।
मम्मति सची पुत्र मत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजवरिपुरिंगोष्ठवादि राधाकुण्डम गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो जस्य प्रतिकृपया तन्नतोऽस्मि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरत्रिषे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्कृते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वांशुते नमामि। भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्मी क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। यं प्रव्रजन्तमन्तेतमतेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तर्बोधेतु संसर्वभूतहृदयं मुनिमान् कृष्ण। तवैवास्मि नामामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे चरणान्तिके। परमाराध्यतम श्रील गुरुपाद पद्म एवं सर्व विघ्न विनाशम श्री नृसिंह देव की कृपा से हम लोगों का दो दिन का भागवत पारायण निर्विघ्न और अच्छी तरह से सुसंपन्न हुआ। आज तीसरा दिवस आरंभ होने जा रहा है। कल तक हम लोग चतुर्थ स्कंद तक हम लोग पहुंचे हैं। उसमें ध्रुव जी की कुछ बातें संक्षेप में पहले बतलाई हैं और इसके बाद में हम लोग आरंभ करेंगे आगे। इसमें आप लोग को ध्यान से सुनेंगे और सुनेंगे, विशेष करके साधकों के लिए बहुत ही आवश्यक है इन चीजों का जानना। अरे भाई बहुत आवश्यक है। इस चीज को समझना। हम लोगों ने श्रवण किया पुरंजन उपाख्यान। संसार में अत्यंत आसक्त पुरंजन, अपना राज्य भी छोड़कर और अच्छे भवन, अच्छी स्त्री, बाल बच्चों के लिए वो चला और बहुत ही सुंदर नवद्वार का एक राजभवन पाया, जिसके चारों तरफ में सुंदर बाग बगीचे लगे हैं, ये सब बतलाया गया। और उसमें रहने वाली अपनी प्रिया के साथ में अत्यंत आसक्त चित्त हो गया। धीरे धीरे बूढ़ा हुआ, जरा देवी ने जोर करके उससे शादी की, वो शादी नहीं करेगा, वो भाग रहा है। और जरा मैंने वृद्धावस्था उसे जैसे तैसे पकड़ करके उसको पति के रूप में वरण कर लिया। अंत में रोग शोक मोह इत्यादि सब के द्वारा जर्जरित होकर प्राण प्रत्याग, अपनी स्त्री में आसक्त था इसलिए वो हो गया स्त्री होकर के जन्म। किंतु कुछ भक्तों की कृपा ऐसी हुई, इस जन्म में उसके पति मिले जो स्त्री बना, पहले था पति अब हो गया स्त्री, और उसका दूसरा पति हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि स्त्रियां स्त्री ही होंगी और पति देव फिर पुरुष होंगे, न जाने पति देव यदि भजन न करेंगे न तो वो न जाने कुकुर होंगे कि सियाल होंगे कि गधे होंगे कि भेड़ होंगे, क्या होंगे उनका कोई भी ठीक नहीं। हो सकता है कि पत्थर होकर के जन्म ले, वृक्ष होकर के, यदि उचित रूप में भगवान का भजन किया, कुछ उन्नति हुई, तब तो मनुष्य जन्म उनको मिला, अन्यथा नहीं मिलेगा। और यदि किसी चीज में आसक्त हो गया और मरने के समय में वो आसक्ति रही, तो वही चीज होकर के जन्म लेगा जिसमें उसकी मरने के समय में आसक्ति। तो वो स्त्री होकर के आया, राजकुमारी होकर के, और राजकुमार के साथ में उसकी शादी हो गई। किंतु बाई चांस भगवान की कुछ कृपा, वो भगवत भक्त धीरे धीरे उसके संग में भक्ति बढ़ती चली गई और अंत में भगवान को दोनों पाए। यहां पर एक शिक्षा की बात है। शिक्षा की बात यह है, सबके शायद समझ में ना आए, किंतु जो कुछ साधु संग किए हैं वो लोग थोड़ा थोड़ा समझेंगे। गीता में लिखा, जब शरीर छूटने को होता है, तदन तेते कलेवरम जंगजम भाव
वापिस मरण भाव तजंते कलेवर,
तो वो जैसा सारा जीवन में कर्म किया रहता है, अंत में उसकी ऐसी ही स्मृति आती है, उन्हीं चीजों को स्मरण करता है जिसमें उसकी आसक्ति थी। इसलिए भगवत भक्त यदि कच्ची अवस्था में भी यदि देह को त्याग कर दिया, भगवान का स्मरण करते करते तो सुचिनां सिमतां गेहे वो आ जाते हैं। सुचिनां माने पवित्र, और सिमतां माने जहां खाने पीने का कष्ट नहीं रहेगा, ऐसे घर में उसका जन्म होगा और जहां से उसका शेष हुआ था वहां से वो आरंभ होगा उसका भजन, और मनुष्य जन्म गारंटी के साथ ही मिलेगा और भगवत भजन के लिए अनुकूल उसको जन्म मिलेगा। अभी जिन जिन लोगों को भगवान के भजन के लिए कुछ मिला है, वो समझे जो पूर्व जन्म का संस्कार से, भगवान की कृपा से उनको भगवत भजन के लिए अनुकूलता मिली हुई है। अब दूसरे जो हैं, जिन जिन चीजों में आसक्त होंगे वैसे ही उनका जन्म होगा। जैसे महाराज भरत थे, मरते समय हिरण में आसक्त हो गए थे,
और उसी की चिंता चिंता करते 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 प्राण छोड़ा, इसलिए हिरणी बन गए। हिरणी बन करके तब आए। अभी कल इस कथा में बच्चे ने बतलाया कि वो पुरंजन अपनी स्त्री की चिंता करते 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 क्या बन गया, दूसरे जन्म में लिया तो वो स्त्री बन गया, लड़की बन गया। ऐसे ही भगवत भजन जो करेगा, और भगवत भजन में क्रमशः निष्ठा रुचि और आसक्ति आई, वो भजनीय वस्तु में राधा कृष्ण में या किसी भी देवता में हो, कहीं भी आसक्ति उसकी हो गई। यदि किसी देवताओं का पूजन कर रहा है तो देवताओं में अति आसक्ति हुई तो वैसा ही उसको सारूप्य मिलकर के वो देवता हो जाएगा, और कुछ दिनों के बाद में फल भोग करने के बाद में फिर गिर पड़ेगा। एतं भुक्त्वा सर्वलोकं विशालः, जहां जहां पर उसकी आसक्ति मिल जाएगा वहीं पर उसी लोक में उसका उसी रूप में जन्म हो। आप लोग सब छोड़ दीजिए माला का, एकांत होकर के सुनिए। तो देवता लोग यदि देवताओं का चिंतन करेंगे तो देवता होकर के वैसे ही आएगा। अब हम देखते हैं अजामिल जमदूतों से छूटकर विष्णु दूतों की कृपा से हरिद्वार में भजन कर देते हैं। अच्छा, वो चिंता किसका कर रहा था? चतुर्भुज नारायण, क्योंकि उसी रूप में परिकर लोग आए हुए थे। उनका रूप चिंतन करते करते अजामिल की अंत में दशा क्या हुई? चतुर्भुज जैसा बन गया और बन करके वैकुंठ में चला गया। जय विजय भी चतुर्भुज रूप धारण करके चले। इसी को कहते हैं सारूप्य मुक्ति। कोई सालोक्य काल, अधिकांश लोग अपने आराध्य, जो उसका आराध्य है उसका चिंतन करते 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 मनोनिवेश करके आसक्त होने के कारण जब शरीर छोड़ देते हैं तो ऐसा ही रूप धारण। कृष्ण का भी सारूप्य होता है। कैसे? जो लोग साधन काल में बड़े प्रेम के साथ में कृष्ण के ही कृष्ण का चिंतन करते 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 उसमें निविष्ट हो गए, उनको कृष्ण का सारूप्य, ये गोप सखा लोग जितने हैं ना वो कृष्ण के सारूप्य हैं। उन लोगों ने कृष्ण का ही अधिक चिंतन किया था, इसलिए सखा के रूप में सुबल सिदाम इत्यादि ये तो नित्य सिद्ध है, किंतु उनके अनुगत दूसरे लोग वैसा हो गया। अब हम चलते हैं इन सब में श्रेष्ठ जो है। इसी तरह से हम जब जब देखते हैं, यहां तक ही और दूसरे लोग भी जो जिसका जिसका उपास्य का ध्यान करने वाले हैं, वो नारायण इत्यादि का सारूप्य पा जाते हैं। अब कुछ लोग गोपियों ने भजन किया, श्रुतियों ने भजन किया, उपनिषदों ने भजन किया, 7,000 दंडकारण्य वासी लोगों ने कृष्ण का भजन किया। भजन करते 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 उनको तो कृष्ण का स्वरूप हो जाना चाहिए था, गोप हो जाना चाहिए थी, तो ये गोपी कैसे हो गए? हम लोग उस पर विचार नहीं करते। आज मैं सोच रहा था स्वरूप्य के संबंध में, तो मैंने देखा यही तो बड़ी विचित्र बात है, बहुत ही सुंदर बात है। फिर मैं गदगद आनंद से हो गई। कह क्यों? उन लोगों को कृष्ण चिंतन करते 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 कृष्ण जैसा किशोर, कृष्ण जैसे होते हैं दुग्ज मुरलीधर होते हैं, ऐसा ही उनका हो जाना चाहिए, तो वो क्यों नहीं हुए? अरे उन लोगों ने कृष्ण का उतना चिंतन नहीं किया। भक्त स्वामी सिंधु में लिखा गया, स्मरण कृष्ण को स्मरण करते हुए और उनके ये जनों को स्मरण करते हुए भजन जब करेंगे ना, दोनों को वृंदावन में रह करके कृष्ण को और उनके परिकरों को जिसके प्रति उनका रूप है, तो भजन करते करते उनकी सिद्धि होती है। तो हमारे महाप्रभु के अनुगत जो है वो इन सभी भाव होने के लिए राधा कृष्ण के लिए
हनुमान महाराज जी का चरित्र श्रवण किया, बहुत सी इसमें शिक्षाएं हैं। पहली बात तो ये, जीव भगवान का भजन करने के बाद में यदि वैकुंठ में चला जाए तो वहां से फिर उसका पतन होता है कि नहीं होता? शास्त्र के अनुसार में देखा जाता है, जद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। जो जीव किसी प्रकार से वैकुंठ धाम गोलोक वृंदावन में चला गया उसका फिर कभी भी पतन नहीं है। क्यों नहीं? कृष्ण इत्यादि का, कृष्ण का या रामचंद्र जी का या नारायण का भी इतना माधुर्य है, इतना उनके गुण अच्छे हैं और उनके रूप में, गुण में, लीलाओं में इतना माधुर्य है कि जी उनको छोड़ करके ये माया के गुणों में कभी नहीं आ सकता। दूसरी बात, हो सकता था यदि उसका किसी प्रकार से अपराध हो जाए, अपराध केवल साधक जीवन में ही संभव हो सकता है। भावावस्था के बाद में प्रेम की स्थिति आने पर उसका अपराध नहीं होता। तो पहली ये शंका होती है कि जय विजय तो वैकुंठ में था, अनादि काल से ही वो भगवान की सेवा करता था जय विजय के रूप में। भगवान का अत्यंत प्रिय होगा तभी तो अपना द्वारपाल बनाया होगा, तो वहां से वो उसका पतन हो गया, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो यह बात गलत हो जाती है, जदगत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वहां से तो लौट करके कोई आता नहीं, तो फिर ये लौट करके कैसे आया? तो इसके संबंध में शिवानंद ब्रह्मचारी जी ने भी बतलाया संक्षेप में, मैं इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर रहा हूं। भगवान तो सब रसों के विषय हैं। रस होते हैं 12 प्रकार के, शांत, दास, सख्य, वात्सल्य, मधुर, हास्य, अद्भुत, करुण, रौद्र, भयानक, विभत्स, वीर भी एक रस है। भगवान ने सब रसों का आस्वादन किया उसके विषय बनकर, किंतु वीर रस, उनके समान कोई वीर नहीं जो उनसे लड़ सके, तो प्रभु की ये आकांक्षा अधूरी रह गई और वो लड़कर के अपने इस पिपाशा को दूर न कर सके। कुछ वो चिंतित थे, द्वारपाल तो सब समय उनके पास ही रहते हैं, इन्होंने देखा जी हमारे प्रभु के अंदर में मन में ऐसी अभिलाषा हुई, सब रसों का आस्वादन किया किंतु वीर रस का आस्वादन नहीं किया, तो प्रभु की इस इच्छा को पूर्ण करना चाहिए। यदि अभी मैं इनसे युद्ध करूं तो वो बनावटी युद्ध, कृत्रिम युद्ध हो जाएगा और उस युद्ध से प्रभु रसास्वादन नहीं कर सकेंगे। सचमुच में इनका बैरी किसी प्रकार से बन करके आऊं और यदि इनसे युद्ध करूं तो इस प्रभु के भी मैं छक्के छुड़ा दूंगा और इनको भी याद करा दूंगा जहां कैसा युद्ध होता है। इसके बिना तो प्रभु को रसास्वादन नहीं करा सकता। सोचा जी ये कैसे बात हो? प्रभु ने समझ लिया, वो तो सर्वज्ञ है, विशेषकर के नारायण सर्वज्ञ है। कृष्ण को भले ही नहीं माना जाए, वो अपनी जोगमाया शक्ति से अबुद्ध जैसे बने रहते हैं, किंतु नारायण का ऐसा कभी नहीं है, वो ऐश्वर्यमय श्री विग्रह है। इसलिए अपने भक्त की मन की बात को जान गए, ओह हमारा भक्त इतना प्यारा कि हमारे इस युद्ध की पिपाशा को भी वो पूर्ण करना चाहता है। वाह, भक्त हो तो ऐसा ही। अच्छा, मैं तुम्हें ये सुअवसर दूंगा, कोई चिंता मत करो। एक दिन की बात है, भगवान
जोग निद्रा में शयन कर रहे हैं, लक्ष्मी जी उनके पैर पलोट रही हैं। पलोटते पलोटते प्रभु तो जोग निद्रा में आ गए नारायण, तो वो किसी काम से प्रभु की सेवा के लिए ही वो वहां से हट करके और जरा चली गई कहीं बाहर में, और वहां से प्रभु की सेवा का वह काम करके लौट रही थी। लौटने आते समय में इन लोगों ने लक्ष्मी जी को रोक दिया, आने नहीं दिया उनके समीप। प्रभु सोए हुए हैं, उनको कष्ट होगा, आप मत भी जाइए। लक्ष्मी जी ने कहा इतनी धृष्टता इनको कैसे हो गई, मुझे रोकने की धृष्टता इनको हुई, सेवक हैं द्वारपाल हैं किंतु किनके लिए, हमें रोकने के लिए। तो वो कुछ भीतर ही भीतर खिन्न हुई, कहा जैसे ऐसे लोगों का यहां आना अनुचित है, बस वो तो संकल्प स्वरूप हैं, ये ऐसे लोगों का यहां आना अच्छा नहीं है, अब उनके ये पतन का कारण बनता है। ये क्यों हुआ, प्रभु की इच्छा से ही उन लोगों ने इनको रोका, उन लोगों को रुकना नहीं चाहिए किंतु रुक लिया। वहां पर सर्वज्ञ भी होते हैं किंतु प्रभु ने जबल दे प्रभु की सर्वज्ञता को आच्छादित कर दिया, तो जय विजय की सर्वज्ञता को आच्छादित करना कोई बड़ी भारी बात नहीं, बस उनकी सर्वज्ञता को आच्छादित कर दिया। और उन्होंने लक्ष्मी जी से ऐसा कर दिया दुर्व्यवहार, लक्ष्मी जी ने कहा जे तुम्हारा यहां रहना अब अच्छा नहीं, और कुछ नहीं क्या, क्योंकि लड़के के समान है, स्पष्ट रूप में उनको अभिसंपात तो नहीं दिया किंतु मन ही मन में कुछ ऐसा भाव हुआ। अब ये गांठ बंधने लगी, बनते बनते अब जबकि सनक सनंदन सनातन ये चारों आए तो उन्होंने उनको एकदम रोक दिया रास्ते पर, आप नारायण के पास में नहीं जा सकते, उनको रोकना उचित नहीं था, उनको प्रभु तो आप तो काम है, प्रभु आत्मा राम है, उनको किसी प्रकार का डर नहीं है, वो निर्भय है, उनको न किसी से चाहिए और न कुछ, उनको कोई चीज का डर भी नहीं है, तो तुमने उनको क्यों रोक दिया, हमें क्यों रोक दिया, ये उनके अंदर में भावना हुई। यदि उस समय में वो विचार करते ये प्रभु का ये प्यारा है तो ये जैसा करा रोकने के लिए तो रुक जाता तो अच्छा था, किंतु उन लोगों को भी क्रोध कुछ आ गया और उन्होंने कहा जी जाओ तुम अशुभ होकर के जन्म ग्रहण करो, यहां पर तुम रहने के लिए योग्य नहीं हो। तो उनके अंदर में भी जय विजय के अंदर में भी उन्होंने ऐसी भावना तय प्रस्तुत की, प्रेरणा की, और उधर में लक्ष्मी जी के हृदय में भी और सनत सनंदन सनत कुमार के अंदर में भी ऐसी भावना करके परस्पर परस्पर ऐसा भाव कर दिया, अभिसंपात दिया। प्रभु दौड़े आए, देखा अपनी जोग माया को हटा दिया, सनत कुमार कहा अरे ये क्या मैंने किया, प्रभु के प्रियों को मैंने अभिसंपात कर दिया, ये तो बहुत अनुचित हुआ, प्रभु मैंने बहुत अनुचित किया, और गिड़गिड़ाने लगे। इधर में जय विजय दिखा जा रही, मैंने क्या कर दिया, इनको रोक दिया मैंने क्यों, ये तो रोकना नहीं चाहिए, आज तक तो मैंने ऐसा किया नहीं, वो अब गिड़गिड़ाने लगे। प्रभु जी बीच में आकर के बोले सेवकों का दोष स्वामी का ही दोष होता है, आप लोग तो बड़े उदार हैं, यह दोष मेरा हुआ इसलिए आप लोग हमें दंड दें अथवा क्षमा कर दें। प्रभु ने ऐसा कहते वो लोग एकदम पानी हो गए, पिघल गए वो, और खुद अनुताप करने लगे कि हम लोगों ने ये अच्छी बात की, प्रभु ने उनको सांत्वना दिया ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, आप कोई चिंता न करें। और इन दोनों को भी कहा कि तुम लोग चिंता मत करना, ये मेरी इच्छा से ऐसा हुआ है, यहां से किसी का पतन नहीं होता है, तुम लोग हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वहां जा रहे हैं। ऋषियों ने कहा तीन जन्म तक केवल तुम लोग असुर रहेगा, इसके बाद फिर तुम हम लोगों को मिल जाओ। इसलिए वृत्रासुर का भी जो देखते हैं कि उनका भी पतन हुआ और वृत्रासुर के रूप में चित्रकेतु महाराज आए, मुक्त पुरुष होकर के फिर बद्ध हो जाते हैं, ये तो संभावना नहीं। प्रभु अपने परिकरों के द्वारा ही जगत की को शिक्षा देते हैं, इसलिए वो चाहते तो अभिसंपात को दूर कर सकते थे, इतने समर्थ थे। मुक्त पुरुषों पर अभिसंपात नहीं लगता, इसलिए उन पर भी संपात नहीं लगता। शंकर जी ने कहा यदि ये चाहते तो इस अभिसंपात को दूर कर देते, अथवा तुमको ही कोई अभिसंपात दे देते थे, इन्होंने किया नहीं। इसलिए वृत्रासुर भी बद्ध जीव जैसे नहीं है, उनको भी अभिसंपात इत्यादि नहीं लगता। वो तो केवल प्रभु को ये दिखा लाना था कि हमारे भक्तों को चाहे स्वर्ग में हो, चाहे नरक में हो, चाहे मोक्ष में स्थिति में हो, तुल्याथ दर्शिना, सर्वत्र तुल्य भाव रखते हैं, कहीं भी उनको कुछ भी कमी बेशी नहीं मिलती। वो तो ये देखते हैं कि हम जहां भी रहें भगवान के गुणों का कीर्तन करता रहे, चाहे हम असुर हो, चाहे दैत्य हो, दानव हो, पशु पक्षी कीट पतंग हो, आपके प्रिय भक्तों का संग मिलता रहे और आपकी कथाओं को सुनने को मिले और सब समय आपके नामों का कीर्तन करता रहूं, यही सुजोग आप दें। हम और कुछ है, हम तो विपत्तियां सब समय चाहते हैं, हम तो सुख नहीं चाहते हैं। सुख के माथे सील पड़े, उसके पत्थर उसके ऊपर, सुख से कोई तात्पर्य नहीं है। हमको तो दुख मिले जहां भी रहें, वैष्णव का संग, यहां तक कि कुत्ता जोनी होकर के भी आऊं तो भी वैष्णव का संग मिले और उनके मुख से हरि कथा हमको सुनने के लिए मिले। प्रहलाद महाराज जी ने भी तो यही भगवान से मांगा, नाथ जोनी सहस्त्रेशु जेसु जेसु ब्रजाम्य हम तेसु तेसु अचला भक्ति अच्युतास्त सदा। जहां पर भी रहूं हे अच्युत आप में ये अच्युता भक्ति हो, जहां जहां पर भी हमारा कीट पतंग इत्यादि हमारा जन्म हो, उनको कोई भी फर्क नहीं आता, चाहे वो बैकुंठ लोक में है अथवा वो स्वर्ग लोक में है या मर्त्य लोक में है या नरक में है, सब उनको एक बराबर लगता है। इसीलिए भक्तों में कुछ सहिष्णुता होनी चाहिए। कुछ भक्ति करने लगे, माता पिता का अनादर करने लगे, पति का अनादर करने लगे, पति भी स्त्री का अनादर करने लगा, पुत्र माता पिता को नहीं मानता और मैं भजन करने लग गया, किसी को नहीं मानूंगा, भाई चौपट हो जाएगा, ऐसा मत करो। प्रहलाद महाराज जी की अभी जो शिक्षा हो रही है उसमें देखो ये कितना गुड़ तत्व है। प्रहलाद महाराज को उसके पिताजी मार रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, आग में जला रहे हैं, समुद्र में फेंकवा रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए पुत्र के लिए कर रहे हैं, किंतु पुत्र ने कभी ये कहा, जो पिताजी खबरदार ऐसा फिर कहा तुमने क्यों कहा ऐसा, कहा मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगा, ऐसा कहा, कुछ भी नहीं, निर्भय, जिस किसी स्थिति को परिस्थिति को वो अपने अनुकूल बना लेते हैं, यही तो उत्तम भक्तों का लक्षण है। थोड़े में बिलबिलाने लग गए, पिता माता से भी मारपीट करने लगे, तो प्रहलाद महाराज जी ने क्यों नहीं किया, ऐसी बात नहीं। वैष्णव को सहिष्णु होना उचित है किस भी परिस्थिति में, बल्कि उनको भी वैष्णव बनाने की जरूरत है। माता हो, पिता हो, पति हैं, स्त्री हैं, सबको अपने अनुकूल ढाल करके बना लो, ये प्रहलाद महाराज की शिक्षा है। और नहीं तो पान से थोड़ा सा चूना इधर हुआ और बस बिगड़ गए, ऐसा नहीं। भक्त को होकर के और क्रोध कहां, यदि क्रोध हो तो देशी जनों के प्रति कहा है यद्यपि किंतु उत्तम भक्त तो सब में प्रभु को देखते हैं, इसलिए ऐसी भावना के साथ में भजन करने से तब होता है भाई। ऐसा नहीं जब थोड़े में बिलबिल आ गए, थोड़े देर में क्रोध हो गया, थोड़े देर में पैर पकड़ने लगे, थोड़े देर में कुछ हुआ तो भजन नष्ट हो जाएगा। इसलिए सब चीजें प्रहलाद महाराज की हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। ये प्रहलाद महाराज जी को जन्मते ही इतना ज्ञान कहां से हो गया? इतना ज्ञान प्रहलाद महाराज जी ने बतलाया था कि मैं माता के गर्भ में था, किंतु उसी समय में हमारे पिताजी चले गए थे तपस्या करने के लिए और मैं उस समय में गर्भ में था। इंद्र ने देखा इसके गर्भ में महातेजस्वी पुत्र है, ये तो हिरण्यकश्यपु से भी बलवान होगा, दुर्धर्ष वीर्य इसका है, इसको अभी मार देना चाहिए और नहीं तो पीछे वही बाप और बेटा दोनों मिलकर के हमें तंग करेंगे, बाप को पीछे देख लेंगे, पहले अभी पुत्र को देख लें। बस आक्रमण करके उसके समस्त संपत्ति को नष्ट करके उसके सेनापतियों को मार करके और कयाधु उसकी मैया को पकड़ करके ले चले, लेकर के जब स्वर्ग में जाने लगे तो इंद्र मिले। अरे इंद्र तू ये क्या कर रहा है? तो मैं उसके दुस्सह वीर्य को मैं नष्ट करने के लिए ले जा रहा हूं, बच्चा पैदा होगा उसे मैं काट दूंगा। अरे तुम क्या, कोई भी इसे नहीं मार सकता, ये तो परम भगवत भक्त है, आप इसे जल्दी से छोड़ दीजिए। बस नारद जी के कहने से उन्होंने गर्भस्थ शिशु को प्रणाम किया और उसकी मैया की प्रदक्षिणा की और उनके हाथों में उनको दे करके और स्वर्ग में चले गए। ओह, मैंने कहीं गलती तो नहीं की, भगवान के विष्णु के भक्तों के ऊपर तो मैंने कुछ गड़बड़ी तो नहीं की, अनुताप करते हुए चले गए। नारद जी उनका हाथ लेकर के पकड़ करके अपने आश्रम में आए, कहे बेटी तू, मैं तुम्हारे पिता के समान हूं, तू हमारे आश्रम में रह जब तक कि तुम्हारे पति नहीं आ जाते। अब उसके उन्होंने कहा ठीक है, उनके आश्रम में रह गई, काम करने लगी, सेवा करने लगी और उनको ये उपदेश देते रहे, कंज बेटी मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गया, तू कुछ वर मांग दे। उन्होंने कहा जे पिताजी यदि आप प्रसन्न हैं तो ये वर दीजिए कि हमारे पति के आने पर ही हमारा गर्भ निकले, बच्चा पैदा हो, हमारे इच्छा के विपरीत जब तक कभी न हो जाए, 10 महीने के बाद में या 10.5 महीने के बाद में ऐसा ना हो, हमारे पति देव आएंगे और तब उनके सामने हमारा पुत्र एवं मस्त ऐसा ही। अब उसने कितनी दिन तपस्या की, 1 वर्ष न 2 वर्ष न 4 वर्ष, सोते हैं कि 60,000 वर्ष तपस्या। अब ये 60,000 वर्ष ये प्रहलाद महाराज जी गर्भ में रहे, सुखदेव गोस्वामी को सुना जाता है कि वो 12 वर्ष तक गोद में रहे, कोई कहते हैं 16 वर्ष, कोई भी बात नहीं, 4 वर्ष का अंतर है, 16 वर्ष ही मान ले, कोई हर्ज नहीं। और ये 16 वर्ष रह करके व्यास देव जी के शिक्षाओं और उपदेशों को श्रवण किया और ये प्रहलाद जी के गुरु के गुरु, प्रहलाद जी के गुरु कौन, नारद जी है ना, तो ये व्यास के गुरु, व्यास जी ने जो सुना, सुखदेव गोस्वामी ने सुना व्यास जी से और इन्होंने सुना किससे, व्यास के गुरु नारद से इन्होंने सुना। कितने वर्ष सुना, 60,000 वर्ष। क्या सुना, यही आत्म तत्व ज्ञान, जितनी भक्ति की बातें 60,000 वर्ष सुनते रहे तो बतलाओ उनको कितना ज्ञान होगा, सुखदेव गोस्वामी जी से कम होगा, वो तो कम नहीं होना चाहिए। इसलिए जन्म के साथ ही साथ में इतना उनको ज्ञान हुआ, जब पिता उसको मार रहे हैं, काट रहे हैं, सबको सहारा है, प्रतिकार करने की चेष्टा नहीं करता, ये भी नहीं कहता पिताजी हमको क्यों मार रहे हैं, मैंने क्या अन्याय किया, ये भी नहीं कहा, चुपचाप सहते रहे। वैष्णवों को ऐसे ही सहना सीखना चाहिए, हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में मारा गया, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको क्यों तू मार रहा है। यदि वैष्णव होना है तो वैष्णव होना इतना सहज नहीं है जितना हम समझते हैं। अच्छा, ये प्रहलाद महाराज जी को ये नारद क्यों मिल गए, आकस्मिक मिल गए या कोई कारण होगा? कॉज एंड एक्शन थ्योरी के अनुसार में कार्य और कारणवाद में बिना किसी कारण के कार्य होता नहीं, तो मालूम होता है कि कुछ कार्य में कारण भी है। कारण यह है, प्रहलाद महाराज जी के जन्म से पहले ही एक ब्राह्मण का लड़का था, बड़ा सदाचारी, सब भ्रांत शिक्षित, सब विषय में गुणी। वो लड़का समय आने पर उसके पिताजी ने उसकी शादी एक परम साध्वी लड़की के साथ में कर दी, परम रूपवती गुणवती, दोनों मिल करके रहने लगे। रहते रहते एक दिन किसी कारण से ये कहीं बाहर में गए, वो ब्राह्मण का लड़का, और जाकर के किसी प्रकार से एक रूपवती गुणवती एक कोई वेश्या थी उस पर आसक्त हो गया। धीरे धीरे अपनी स्त्री को, अपने पिता माता की सेवा को, बच्चों का पालन पोषण करना सब छोड़ छाड़ कर क्रमशः उसी में आसक्त हो गया, और ऐसा आसक्त हो गया कि ये सबको छोड़ करके घर बार सब बेच बांच करके सब वेश्या को अर्पण कर दिए। एक दिन जब इसके पास में कुछ नहीं रह गया, प्रहलाद गए, अब आदर नहीं किया, पैसे का आदर, लौकिक स्थानों में ये सब विषयों में बस पैसे का आदर, पैसा नहीं दिया, कहे घर से निकल जाओ, अपमान किया। अब प्रहलाद महाराज जी ने वो जो बालक था, लड़का जुआ, वो उसको बहुत अपमानित हुआ और कहा जी ये प्राण रखना नहीं है, मैंने सर्वस्व इसको दे दिया और इसने हमारे साथ में ऐसे किया व्यवहार दुर्व्यवहार, अब मैं चलूं। बस उस दिन सवेरे की बात, अब वो निकल गया, निकल करके जंगल में गया, प्राण छोड़ देंगे। इतने में रात हो गई, रात होने पर जंगल में बाघ भालू सब बोलने लग गए, डर के मारे अब प्राण नहीं, सहज ही प्राण नहीं छूटते हैं। बस वो डर करके एक खंडहर मंदिर सा था उसी में घुस गया, रात भर तड़पता रहा, वेश्या के वाक्य रूपी बाण उसके हृदय में चुभ रहे थे, निकल नहीं रहे थे, रोते रोते रोते, कुछ खाया नहीं दिन भर रात भर, और वहीं पर पड़ा रहा। इधर में वो वेश्या को भी अनुताप हुआ, उसको खोजते 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 वो भी चली, और शाम को उसी वन में उसी जगह में पहुंची। वर्षा होने लगी, शीतकाल का समय, अपनी रक्षा के लिए वो भी खंडहर मंदिर के एक कोने में चली गई, और एक कोने में ये बाल, ये जुआ ब्राह्मण का लड़का, किसी ने किसी को परस्पर नहीं देखा। सारी रात बीत गई, दोनों रोते रोते, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, परस्पर चिंतित रहने के कारण जब सवेरा हुआ, कुछ प्रकाश हुआ, तो देख अरे यही तो ये हमारे वो जुआ वाला लड़का है, और उसने देखा ये यही तो वही वेश्या है, हमारी प्रियतमा है। बस दोनों मिल गए और दोनों दोनों पकड़ करके रोने लग गए। अच्छा, उस वो दिन क्या था, जिस दिन ये घटना हुई उस दिन नृसिंह चतुर्दशी का व्रत था, और उस दिन ये दिन में कुछ नहीं खाया, रात में भी कुछ नहीं खाया, और उस मंदिर में नहीं, सिंह देव का ही खंडहर मंदिर बाई चांस, और उसी में ये लोग रहे, रात भर जागरण किया, सोए नहीं। इसी का यह फल हुआ, यदि अनजान में भी कोई व्यक्ति उपवास के दिन किसी प्रकार से न खाए और न सोए, तो उसका इतना फल होता है मंदिर में रहने रह करके उपवास करने से, जो वो प्रहलाद महाराज होकर के आए, वही प्रहलाद महाराज और उनकी पत्नी वही वेश्या होकर के आई और इतना फल हुआ। ये इसको कहते हैं सुकृति। ऐसे ही कोटि कोटि सुकृति पुष्ट होने के बाद में तब भगवत भक्तों का संग होता है और उसके द्वारा भक्ति होती है। तब ऐसी निश्चला निश्चल परिनिष्ठिता उसको भक्ति होती है, और नहीं तो कुछ दिन भक्ति करेंगे, भक्ति का तत्व समझ में नहीं आएगा, अभिमान होगा जो मैं ब्रह्म वैष्णव हो गया, मैं भक्त हो गया, अभी उसमें भूल नहीं। ये कनिष्ठ कोटि के ये लोग भक्त हैं। उत्तम कोटि भक्तों का संग पाने से इनका कल्याण होता है, इसलिए खूब दृढ़ता के साथ में समस्त विश्व एक तरफ में रहे, हम जहां भी रहेंगे भगवान का भजन करेंगे, ऐसी भी निष्ठा हो और सब में प्रभु को प्रहलाद महाराज जैसे सर्वत्र ही अपने इष्ट देव को देखते थे सब में, और सब में इष्ट देव को देखते थे, ऐसी यदि हो तो उत्तमा भक्त है। ऐसे भक्त का यदि घर में कोई भजन भी ना करे तो उसके 21 पीढ़ी के पिता और पितर और सब लोग तर जाते हैं बिना भजन किए हुए ही। और मध्यम कोटि का संबंध ज्ञान युक्त होकर के गुरु की सेवा करने वाला वैष्णव हो, अभी मध्यम अधि में आया हो, तो उसके 14 पीढ़ी के माता पिता सबका उद्धार हो जाता है। और यदि कनिष्ठ अधिकारी भी हो तो भी उसका 7 पीढ़ी के माता पिता और सबका उद्धार हो जाता है। क्यों? यदि आग बिना उसका प्रभाव जाने ही कोई गलती से उसमें हाथ दे दे तो जलाएगा कि नहीं? वो तो जरूर जलाएगा ही। ऐसे ही भगवान का नाम है, उसका कोई प्रभाव जानता नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है, ऐसे ही भगवान का नाम ले लिया तो भगवान के नाम का फल होगा कि नहीं होगा? यदि बिना जाने हुए आग में हाथ देता है तो वो जलाती है, तो द्रव्य का गुण तो जरूर प्रकाशित होगा। इसलिए जैसे तैसे भी कोई भगवान का नाम करेगा तो भी उसका फल होगा, किंतु श्रद्धा पूर्वक यदि करेगा प्रेम के साथ में, उसका फल कुछ दूसरा होगा और इसका संसार दूर हो जाएगा, कष्ट दूर हो जाएंगे, इसका फल तो जरूर किसी न किसी का होगा। इसीलिए हम लोग प्रहलाद महाराज जी की शिक्षाओं को ग्रहण करके यदि चले तो सहजी में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और फिर जन्म मरण के चक्कर से भी दूर हो जाएगा, और अंत में हम लोग भगवत भाव को प्राप्त होंगे। ऐसी भी और भी शिक्षाएं हैं, कितनी मैंने संक्षेप में दो एक बातें बतलाई। अभी एक कीर्तन इनका होगा, वो ब्रज कोकिला जी का, और फिर तब हम लोग आरती करके समाप्त करें। कल से आप लोग 7:30 बजे के अंदर 7 बजे तक आप लोग तैयार।
ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो
उनको तीनों को पकड़ कर बात कर दो, बात कर दो।
वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महापतन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरपिशे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं विमां तुष्णीं यं प्रव्रजन्तमनुपेतम्।